एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
सृजनहारा तू है, तारनहारा तू है, मुक्ति दाता पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे यीशु।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
परमेश्वर का राज्य निकट है। नमस्कार मेरे प्रिय श्रोतागण, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे जब आप उनके वचनों को सुनते हैं। आइए हम उससे पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को खोल दे और तेरा पवित्र आत्मा से भर दे पिता, और तेरा बुद्धि से भर दे कि हम तेरे वचनों को सुने और उसे समझने सके, और हमें तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे कि हम तेरे रास्ता में चल सके। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे इच्छा के अनुसार भली भांति बतला सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आज का मेरा संवाद का शीर्षक है परमेश्वर का राज्य निकट है। उधार हमें यीशु के नाम से मिलता है। प्रेरितों के काम 4:12। अनंत जीवन हमें यीशु को जानने और अपना प्रभु मानने से प्राप्त होता है। यूहन्ना 17:3। और यूहन्ना यीशु मसीह का चेला लिखता है यूहन्ना 1:11-12 में। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हम पढ़ते हैं मरकुस 1:14-15 में। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मरकुस 1:14-15। इसी तरह से यूहन्ना जो यीशु मसीह का रास्ता तैयार कर रहा था, वह प्रचार कर रहा था यीशु मसीह के आने से पहले, मन फिराओ और तैयार हो जाओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। मसीह के आगमन का समाचार पहले यहूदिया में सुनाया गया, यरूशलेम के मंदिर में। आगे चलने वाले के जन्म के विषय में जकरिया को जब वह बेदी की सेवकाई कर रहा था तब उसे बता दिया गया था। बेतलहम के पहाड़ियों पर स्वर्गदूतों द्वारा यीशु के जन्म की घोषणा कर दी गई थी। ज्योतिषी लोग उसकी खोज में यरूशलेम को आए थे। मंदिर के भीतर समौन और हन्ना ने उसके ईश्वर होने की गवाही दिए थे। यरूशलेम और पूरा यहूदिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के प्रचार को सुना था, और सन्हेड्रिन से आए हुए प्रतिनिधि तथा भीड़ की भीड़ यीशु से संबंधित उसकी गवाही को सुना था। मसीह को पहला शिष्य यहूदिया में मिला था। उसकी सेवकाई का अधिकतर समय यहीं पर बीता था। उसके ईश्वरत्व की पहचान मंदिर की सफाई कराते समय हो चुकी थी। उसके चंगाई के काम और उसके होठों से ईश्वरीय सत्य की वाणी निकलती थी। बेथसदा पर चंगाई देते समय उसने सन्हेड्रिन के सामने अपने आप को अनंत पिता का पुत्र होने को घोषित किया था। यदि इज़राइल के धार्मिक अधिकारी लोग मसीह को स्वीकार कर लिए होते तो वह उन्हें सम्मानित करता कि वे उसके संदेश वाहक बनकर संसार को सुसमाचार सुनाते। उन्हें पहले अवसर दिया गया था कि वे परमेश्वर के राज्य और अनुग्रह के राजदूत बने, परंतु इज़राइली उसके आने के समय को नहीं जानते थे। यहूदी अगुओं की डाह और अविश्वास ने घृणा के मार्ग को खोल दिया था और लोगों का हृदय यीशु की ओर से हटकर दूर हो गया था। सन्हेड्रिन ने मसीह के संदेश को रद्द कर दिया था तथा उसकी मृत्यु के लिए दृढ़ संकल्प कर लिया था। इसलिए यीशु यरूशलेम से, याजकों से, मंदिर से, धार्मिक गुरुओं से और उन लोगों से जिन्हें व्यवस्था की शिक्षा मिली थी दूर चला गया और एक दर्जे के लोगों को तथा जो कोई भी उसके सुसमाचार प्रचार के लिए संसार में जाए उन्हें एकत्रित किया। जिस प्रकार से मसीह के दिनों में मनुष्यों के जीवन और ज्योति को धार्मिक अधिकारियों द्वारा रद्द कर दिया गया था, उसी प्रकार से आने वाली प्रत्येक पीढ़ी में रद्द किया जाता रहा। यीशु के यहूदिया से चले जाने का इतिहास बार बार दोहराया जाता रहा है। जब सुधारक लोगों ने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया तो उनका आशय यह कभी नहीं था कि स्थापित की हुई कलीसिया को विभाजित कर दें, परंतु धार्मिक अगुओं ने प्रकाश की ज्योति को सहन नहीं किया और जिन्होंने भी उसे ग्रहण कर लिया उन पर दबाव पड़ा कि वे सच्चाई की खोज करने वालों के साथ हो जाएं। आज के हमारे युग में भी कुछ ऐसे सुधारक हैं जिनकी अगुवाई वही आत्मा करता है। बहुत कम हैं जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं और किसी भी रूप में सच्चाई को प्रस्तुत किए जाने पर स्वीकार कर लेते हैं। कभी कभी तो जो सुधारकों के पद चिन्हों पर चलने का प्रयत्न करते हैं उन्हें उस कलीसिया को छोड़ देने पर मजबूर कर दिया जाता है जिसे वे अत्यंत प्यार करते हैं, ताकि वे परमेश्वर के वचन की सीधी और सही शिक्षा को मान सकें। बहुत बार तो ऐसा होता है कि जो लोग ज्योति की चाह करते हैं वे उसी शिक्षा को मानने के कारण अपने पूर्वजों की कलीसिया से अलग हो जाते हैं ताकि सही शिक्षा का पालन कर सकें। गलील के लोगों को यरूशलेम के रब्बी लोगों ने अनपढ़, गंवार और ढीठ कहकर तिरस्कृत कर दिया था, फिर भी वे लोग उद्धारकर्ता के कार्य के लिए एक अच्छा खेत प्रमाणित हुए। वे लोग बहुत ही ईमानदार और गंभीर प्रकृति के थे। हठ धार्मिकता के नियंत्रण से बाहर हटकर सच्चाई को ग्रहण करने के लिए उनके दिमाग अधिक खुले हुए थे। गलील को जाते समय यीशु ने यह नहीं चाहा था कि वह एकांत में लोगों से अलग थलग रहने जा रहा है। उस समय वह प्रदेश बहुत धनी आबादी वाला हो गया था। दूसरे देशों की तुलना में यहूदिया में मिले जुले लोगों की संख्या अधिक थी। जैसे जैसे यीशु उपदेश देता और चंगाई का कार्य करता हुआ गलील को जाने की यात्रा करता हुआ चला, मार्ग में गांवों और नगरों से निकलकर भीड़ की भीड़ उसे सुनने के लिए उमड़ती गई। बहुत से लोग तो यहूदिया और उससे लगे हुए प्रदेशों तक से भी आए। कभी कभी तो उसे लोगों से छिपना पड़ जाता था। लोगों का उत्साह इतना बढ़ गया था कि सावधान हो जाना अति आवश्यक हो गया, नहीं तो रोमी शासन के अधिकारी राज विद्रोह की आशंका से डरकर चौकने हो जाएंगे। इससे पहले संसार के सामने ऐसा समय कभी नहीं आया था। स्वर्ग इस धरती पर मनुष्यों के बीच उतर आया था। भूखी प्यासी आत्माएं जो लंबे समय से इज़राइल के छुटकारे के लिए प्रतीक्षा कर रही थी इस समय दयालु उद्धारकर्ता के साथ उसके अनुग्रह में सहभागी हो रही थी। मसीह के प्रचार की मुख्य बात यह थी, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। इस प्रकार से जो सुसमाचार मुक्तिदाता ने स्वयं दिया उसका आधार भविष्यवाणियां थी। समय जिसकी चर्चा उसने किया कि पूरा हुआ यह वह था जिसे जिब्राइल स्वर्गदूत ने दानियल को बताया था। 70 सप्ताह स्वर्गदूत ने कहा, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट होए और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। यह हम पढ़ते हैं दानियल 9:24 में। भविष्यवाणी में एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है। आप इसे बाइबल में देख सकते हैं, गिनती का 14:34 और एजिकियल 4:6 मिला सकते हैं और इसे पढ़कर समझ सकते हैं। 70 सप्ताह अर्थात 490 दिन 490 वर्ष को बताते हैं। इस अवधि के आरंभ होने की बिंदु को भी बताया गया है। सो यह जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाए जाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। यह हम पढ़ते हैं दानियल 9:25 में। 62 सप्ताह और 7 सप्ताह अर्थात 69 सप्ताह मतलब 483 दिन या 483 वर्ष हुए। यरूशलेम को फिर से बसाने की आज्ञा, यह कार्य अर्थशास्त्र के आदेश अनुसार 457 ईसा पूर्व के शरद काल में आरंभ हुआ और 483 वर्ष सन 27 ईस्वी के शरद काल तक पहुंचता है। भविष्यवाणी के अनुसार यह अवधि अभिषिक्त मसीह तक पहुंचाती है। सन 27 ईस्वी में बपतिस्मे के रूप में यीशु का पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक हुआ और उसके बाद से ही उसने अपनी सेवकाई को आरंभ किया था। तब यह संदेश प्रचारित किया गया, समय पूरा हुआ और तब स्वर्गदूत ने कहा और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। मुक्तिदाता की सेवकाई आरंभ होने से लेकर 7 वर्ष तक सुसमाचार का सुनाया जाना, विशेषकर यहूदियों को सुनाया जाना था। 3.5 वर्ष तक स्वयं मसीह द्वारा और उसके बाद शिष्यों द्वारा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन बलि को बंद करेगा। यह हम पढ़ते हैं दानियल 9:27 में। सन 31 ईस्वी के बसंत ऋतु में वास्तविक बलि मसीह कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया गया। तब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे की ओर फट गया। यह इस बात को प्रकट करता है कि बलि चढ़ाने वाली सेवकाई का अंत हो गया। समय आ गया कि अब पृथ्वी वाले मंदिर में पशुओं का बलिदान करना समाप्त हो गया। 1 सप्ताह 7 वर्ष इस अवधि का अंत सन 34 ईस्वी में हुआ। उस समय स्टिफनुस को पथरवा करके मार डालने के साथ साथ यहूदियों ने पूर्ण रूप से सुसमाचार को रद्द कर दिया। चेले लोग जो यातना के भय से इधर उधर तितिर बितिर हो गए थे, जो तितिर बितिर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। यह हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 8:4 में। और थोड़े समय बाद ही साउल सताने वाले का नाम, उसका मन परिवर्तन होने के बाद पौलुस में बदल गया। अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने के लिए पौलुस प्रेरित हो गया। मसीह के आगमन का समय, पवित्र आत्मा द्वारा उसे अभिषिक्त करना, उसकी मृत्यु और अन्य जातियों को सुसमाचार देना, निश्चय रूप से इन सब बातों के लिए पहले से ही संकेत कर दिया गया था। यहूदी लोगों को यह सौभाग्य दिया गया था कि वे इन भविष्यवाणियों को समझे और यीशु के कार्यों द्वारा उनके पूर्ण होने को पहचाने। मसीह ने अपने शिष्यों से विनती की कि वे भविष्यवाणियों की महत्वता का अध्ययन करें। दानियल द्वारा लिखी गई भविष्यवाणी जो उनके समय से संबंधित थी, मसीह ने कहा जो पढ़े वह समझे, मत्ती 24:15 में लिखा है। अपने पुनरुत्थान के बाद उसने अपने चेलों से कहा सब भविष्यवक्ताओं द्वारा अपने विषय में की गई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। यह हम देख सकते हैं 24:27 में। उद्धारकर्ता ने सारे भविष्यवक्ताओं के माध्यम से बात किया है। मसीह का आत्मा जो उनमें था पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। 1 पत्रस 1:11। यह जिब्राइल था, परमेश्वर के पुत्र के दर्जे के बाद वाला स्वर्गदूत जो ईश्वरीय संदेश को लेकर दानियल के पास आया था। यह जिब्राइल था, उसका
स्वर्गदूत जिसे मसीह ने भेजा कि प्रिय यहूना पर भविष्य को प्रकट करे और उन्हें आशीष देने के लिए घोषित किया गया है, जो भविष्यवाणियों को पढ़ते और सुनते और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। प्रकाशित वाक्य 1:3। प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ नहीं करेगा, जबकि गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगे। आमोस 3:7 और व्यवस्था विवरण 29:29। परमेश्वर ने यह सब हमारे लिए दिया है और उसकी आशीषें हमें अवश्य मिलेंगी जब हम प्रार्थना के साथ भविष्यवाणियों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मसीह के पहले आगमन के समय घोषित किया गया था अनुग्रह का राज्य, उसी प्रकार से उसके दूसरे आगमन के समय को महिमा का राज्य घोषित करता है। पहले संदेश के समान ही दूसरा संदेश भी भविष्यवाणियों पर आधारित है। स्वर्गदूत के वे शब्द जो दानियल से अंतिम समय के लिए कहे गए थे, उन्हें इस अंत समय में समझना चाहिए। उस समय बहुत लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढाढ़ करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। ये हम पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक उसका 12:4-10 में। मुक्तिदाता स्वयं ने अपने दूसरे आगमन के चिन्ह बताए हैं। जब तुम ये बातें होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। लूका 21:31-36 पद में। पवित्र शास्त्र के इन पदस्थलों में जो कहा गया है, हम उस अवधि में पहुंच चुके हैं। अंत का समय आ पहुंचा है। भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं और उनकी गंभीरतापूर्ण चेतावनियां हमारे प्रभु के आगमन की ओर संकेत करती हैं कि उसका महिमामय आगमन बहुत ही निकट है। यहूदी लोगों ने परमेश्वर के वचन का गलत अर्थ निकाला और उसी प्रकार से उसका प्रयोग भी किया और वे उसके आने के समय को नहीं जान सके। मसीह और उसके चेलों की सेवकाई के वर्षों में और अंतिम वर्षों में चुने हुए लोगों पर उसके अनुग्रह के समय में वे लोग प्रभु और उसके संदेश वाहकों को मिटा डालने की षड्यंत्र पूर्ण योजना ही बनाते रहे। संसारिक लालसा में इतना डूब चुके थे कि आत्मिक राज्य की बातें उनके लिए व्यर्थ की लगती थी। इसी प्रकार से आज के युग में भी इस धरती के राज के विचारों में लोग डूब चुके हैं और वे भविष्यवाणियों के तेजी से पूर्ण होते हुए तथा परमेश्वर के राज्य को तेजी से आते हुए नहीं देख पा रहे हैं। पर हम पढ़ते हैं 1 थिस्सलुनीकियों 5:4-6 जिसे पौलुस प्रेरित हमारे लिए लिखा है कि पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहें पर जागते और सावधान रहें। तो हम प्रभु यीशु मसीह को जान लिए हैं। अगर हम उसमें विश्वास करते हैं, यीशु मसीह हमें सामर्थ देते हैं कि हम परमेश्वर के संतान बने और हम उसके राज्य के लोग बने और तैयार हों। हमें चौकस किया गया है, समय बहुत निकट है, यीशु मसीह का दूसरा आगमन भी बहुत निकट है। जैसा कि यीशु मसीह का पहला आगमन के विषय में प्रचार किया गया था, बहुत से लोग उसे नहीं पहचान पाए, लेकिन आज हमें यह मौका है कि हम हमारे इर्द गिर्द दुनिया में घटी होते हुए घटनाओं को देखे और पहचाने कि यीशु मसीह जैसे उन्हें प्रतिज्ञा किया उसका दूसरा आगमन निकट है। आइए हम अपने मनों को तैयार करें और उसके राज के लिए तैयार हो जाएं। परमेश्वर हम सबों को विशेष आपको बहुताय से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे दयालु महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के समीप आते हैं पिता परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी उपासना करते हैं, तेरे वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। तू हमें बचाने के लिए, हमें लेने के लिए फिर आ रहा है। हमारे जीवन को, हमारे मनों को तू तैयार कर, हमें बुद्धि दे, हमें तेरे पवित्र आत्मा से भर दे पिता। मेरे हर एक श्रोताओं के संग हो, हमें तू समझने के लिए और वचन को ग्रहण करने के लिए मदद कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनक गण। आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaven.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।